समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि कई बार समय पर समझ नहीं होती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। लेकिन हम समय को निकलने नहीं देंगे और एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए शुरू करेंगे समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और मेरी सहयोगी रेणु कटारिया, हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू आवर फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 12th of December. So let us begin with the headlines first, Ravi.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत की। सत्र के दौरान मिस्टिक ओरिजिनल्स के टीम लीडर ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बताई गई सुरक्षा चुनौती पर अपना समाधान प्रस्तुत किया, जिसे माइक्रो डॉपलर आधार पर पक्षियों और ड्रोन के बीच अंतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर संबोधन के दौरान टीम के समर्पण की प्रशंसा भी की।
External Affairs Minister S. Jaishankar and his UAE counterpart Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan will hold the India-UAE strategic dialogue in New Delhi today. The UAE Foreign Affairs Minister will also meet Prime Minister Narendra Modi in the afternoon. UAE Deputy Prime Minister and Foreign Minister arrived in New Delhi to take part in the 4th strategic dialogue and the 15th India-UAE Joint Commission meeting. Welcoming the UAE leader, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal in a post on X said, the visit will further strengthen the multifaceted comprehensive strategic partnership between India and UAE. Our correspondent reports that India and UAE have shared trade links through the centuries.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जबकि वर्ष 2040 तक कोई भारतीय नागरिक चांद पर उतरेगा। नई दिल्ली में सभी विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अब तक भारत से 432 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 90% पिछले 10 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं।
Former President Ramnath Kovind has said that One Nation, One Election, ONOE, has potential to boost India's GDP by 1 to 1.5%. Making a strong pitch for One Nation, One Election, former President and Chairman of the ONOE Committee said that it will be a game changer for the country. Talking to media persons in Kanpur, Mr. Kovind said, central government will have to build consensus for the implementation of ONOE. While voicing support for holding simultaneous elections to the state assemblies and Lok Sabha in the country, Mr. Kovind asserted that this issue is in the interest of the nation.
मेटा ने इस बात की पुष्टि की है कि तकनीकी समस्या के चलते इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को ऐप के इस्तेमाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने हैंडल एक्स पर एक बयान में मेटा ने पुष्टि की कि उसे पता है कि एक तकनीकी समस्या कुछ उपयोगकर्ताओं की उसके ऐप्स तक पहुंचने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। कंपनी जल्द ही सामान्य सेवा बहाल करने के लिए काम कर रही है और उपयोगकर्ताओं से किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगती है।
Prime Minister Narendra Modi met the family of legendary filmmaker Raj Kapoor in New Delhi yesterday to commemorate his life and legacy ahead of his birth centenary on 14th December. The Kapoor family invited the Prime Minister to the Raj Kapoor Film Festival, which will be held from 13th to 15th of this month in 40 cities. The Prime Minister hailed the filmmaker's contribution to the nation, saying that he established India's soft power in the world at a time when the term itself was not coined. So here, let's listen in to an excerpt from Prime Minister Narendra Modi's conversation with Ranbir Kapoor.
पिछले हफ्ते जो हमारी WhatsApp फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी.
मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए. कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी, आपका स्वागत करने का अवसर मिला. और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी. अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं. 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है. आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है. जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, चाहे राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था.
The Prime Minister urged the Kapoor family to make a movie specially catering to Central Asia about Raj Kapoor, who is still mesmerizing the people there even after so many years. He added that efforts must be put to make Indian cinema reach the new generations in Central Asia and urged the family to create a movie which would act as a link.
और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं रेनू कटारिया.
थैंक यू रवि. Madras High Court has directed the state to consider and pass orders on a plea which sought a direction to include the child helpline number, provisions relating to the Protection of Children from Sexual Offences Act and the fundamental duties and rights of every citizen prescribed by the Constitution in the school textbooks in Tamil Nadu. Non-consideration of the representation by the statutory authority would amount to dereliction of duty. And there is another news from Chennai Metro. Tamil Nadu Transport Minister S.S. Sivasankar has reversed an order that banned bike taxis and the use of two-wheelers for commercial purposes. The ban, issued by Transport Commissioner Sun Chongam Jatak Chiru in response to complaints from auto drivers, instructed field officials to conduct an enforcement drive and submit an action taken report. However, the order triggered widespread confusion and chaos among operators and users of bike taxis across the state. Minister Sivasankar said that more clarity from the state and the courts are required to make a final decision. Until then, there is no effective ban on bike taxis. Moving on to Bengaluru Metro, the first news is the Bangalore Water Supply and Sewage Board, BWSSB, has proposed an innovative project to supply treated sewage water to the Peenya Industrial Area, Asia's largest industrial hub, for non-potable purposes. Estimated at 27.5 crore rupees, the project has been approved by the board and submitted to the state government for consideration, according to sources. And another news from Bengaluru Metro, Karnataka is expected to witness moderate to heavy rainfall in the coming days with widespread showers across coastal, Malnad and south interior districts, according to weather officials. A yellow alert has been issued in several districts, including Bengaluru, until tomorrow. Heavy rainfall forecast is there for Tumkur, Bengaluru Urban, Bengaluru Rural and Kodagu districts today and tomorrow, while light to moderate rain is likely in most south interior regions. A yellow alert is in place for tomorrow in Bengaluru Urban, Bengaluru Rural, Chitradurga, Kollar and Ramanagara districts. And the last news that I have, Ravi, is from Hyderabad Metro.
Ji.
Telangana candidate showcased exceptional performance in the UPSC mains 2024 results, with 20 aspirants emerging successful under the state government's financial assistance scheme. For the first time this year, the state implemented the Rajiv Civils Abhay Hastam program to support financially weak candidates preparing for civil services. 135 aspirants received financial aid of 1 lakh rupees each, felicitated by the Singaneri called Collieries Company through this initiative. An official release stated that among those who received aid under the Rajiv Civils Abhay Hastam scheme, 20 candidates have now successfully cleared the UPSC mains examination. And for the rest of the news from the other metros, that is Delhi, Mumbai and Kolkata, let's go on to you, Ravi.
Dhanyavaad, Vinu. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने कल एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक महिला के शरीर से करीब 10 किलोग्राम के ट्यूमर को सर्जरी कर बाहर निकाला. एम्स ने बताया कि 49 वर्षीय मरीज के शरीर में यह ट्यूमर काफी समय से था, जिसे डॉक्टरों की कुशल टीम ने लगभग 10 घंटे तक चली सर्जरी के बाद निकाला. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एम्स में डॉक्टर एमडी रे ने बताया कि ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया था और शरीर के कई अंगों में फैल गया था, जिसकी वजह से मरीज को खाने पीने में भी परेशानी हो रही थी और उसका वजन भी 3 महीने में लगभग 15 किलो तक घट गया था. दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की. इस अवसर पर श्री सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के साथ मिलजुल कर विद्यार्थियों के हित में कार्य करेंगे. उन्होंने डूसू पदाधिकारियों से कहा कि अब सभी को विरूपण के लिए उदाहरण बनना है, ताकि कोई विश्वविद्यालय की दीवारों को गंदा ना कर सके. इस विषय पर सभी छात्र संघ पदाधिकारियों ने कुलपति को आश्वासन दिया कि वे गंभीरता से काम करेंगे. दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविन्द्र भवन परिसर में पुस्तकायन पुस्तक मेला जारी है. साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पुस्तक प्रेमी बड़ी संख्या में आ रहे हैं. 15 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश निःशुल्क है और लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मेले में जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के अभियान के अंतर्गत पंजाबी बाग स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. पुलिस के अनुसार इस कार्यक्रम में आसपास के अन्य विद्यालयों के छात्र भी शामिल हुए. बढ़ते हैं मुंबई की ओर. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय MUHS द्वारा आयोजित 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के हाल ही में लीक होने के बाद विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और विश्वविद्यालय स्तर पर और साथ ही संबंधित कॉलेजों में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड ने ईमेल के माध्यम से परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र भेजने का निर्णय लिया है. परीक्षा बोर्ड के निर्णय के अनुसार शीतकालीन 2024 परीक्षा के दूसरे चरण के लिए 13 और 19 दिसंबर 2024 को निर्धारित द्वितीय वर्ष के मेडिकल पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र संबंधित परीक्षा केंद्रों को ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे. चलते हैं कोलकाता की ओर. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले सॉफ्टवेयर संस्करण 2024 का आयोजन किया जा रहा है. IIT खड़गपुर में कुल 35 टीमें भाग ले रही हैं. सॉफ्टवेयर संस्करण का आयोजन संस्थान में किया जा रहा है. तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार.
एंड आफ्टर द मेट्रो न्यूज, रवि, हमें स्पोर्ट्स राउंडअप पे आ गए हैं हम.
जी बिल्कुल.
सो नाउ लेट अस गो टू आवर कोरेस्पोंडेंट मानिक फॉर आवर डेली स्पोर्ट्स अपडेट. एंड मानिक, व्हाट डू यू हैव फॉर अस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स?
रेनू, लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द यूथ सर्किट. द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर इन 2 सेपरेट फेजेस. लद्दाख विल होस्ट द आइस इवेंट्स इंक्लूडिंग आइस हॉकी एंड आइस स्कीइंग फ्रॉम जनवरी 23rd टू 27th. मीनवाइल, जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द स्नो इवेंट्स सच एज अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग एंड स्नोबोर्डिंग फ्रॉम फेब्रुअरी 22nd टू 25th. In other news, the Indian contingent is gearing up for their quarterfinal fixtures in World Squash Team Championships 2024. The Indian men's team will face France in the quarterfinal in Hong Kong, China today after staging a remarkable comeback to defeat Malaysia 2-1 in the pre-quarterfinals yesterday. While the Indian women's team will take on USA in their quarterfinal match, having defeated Australia 2-1 in their pre-quarterfinals. In chess, it is a big day for Indian Grandmaster Domaraju Gukesh, as he will face defending champion Ding Lijian of China in the 14th and final game of the FIDE World Chess Championship in Singapore today. Ding holds a slight advantage playing with the white pieces. Yesterday's 30th game ended in a draw after a 5-hour battle, leaving both pairs tied at 6.5 points each. A win today will secure the title. And finally, in hockey, India will face Thailand in their fourth and final league match of the Women's Junior Asia Cup in Muscat today, seeking to bounce back from yesterday's 1-2 defeat to China. Renu?
Thank you, Manik, for the comprehensive report. Thank you so much.
आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और रेणु के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रेणु ठंडी हवाएं चलने की संभावना है,
बिल्कुल,
और वो तो हम महसूस कर ही रहे हैं
जी।
आपने भी कितनी मोटी जैकेट पहन रखी है और मैं भी,
इट इज कोल्ड एक्चुअली, यस
जी बिल्कुल। तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की अगर बात करें तो वहां आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
एंड मूविंग ऑन टू द सदर्न सिटीज, Chennai is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 25 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
Aur ab bari hai itihas ke pannon ko palatne ki, lekin usse pehle apne shrotaon ko jankari de dein ki aaj International Day of Neutrality, International Universal Coverage Day, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और साथ ही स्वदेशी दिवस भी है। तो रेनू, क्या आप इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के बारे में अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट रवि, बिकॉज दिस इज सच अ पॉजिटिव साइन अगेन एंड अ वेरी पॉजिटिव न्यूज एंड अ वेरी पॉजिटिव डे फॉर ऑल ऑफ अस। एज टूडे वी आर ऑब्जर्विंग द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, अ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस प्रमोटिंग इम्पार्शियलिटी, नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Established by the UN General Assembly in 2017, the day emphasizes the role of neutrality in fostering peace, diplomacy and international cooperation. Observed annually on December 12th, it also commemorates Turkmenistan's declaration of neutrality adopted in 1995.
Jee.
Neutrality plays a vital role in preventing conflicts, enabling nations to mediate disputes and advocate for peaceful resolutions.
Bilkul chi.
And so in today's world, it is of paramount importance to exercise restraint in resolving conflicts related to border disputes, resource distribution, allocation and other contentious issues. And Ravi, to sum this up, Albert Einstein has rightly said, peace cannot be achieved through force, it can only be attained through understanding and neutrality.
Bahut hi achhi jankari di aapne Renu. Waise jahan tak International Universal Coverage Day yani ki sarvabhaumik swasthya coverage divas ki baat hai, to ye din sarvabhaumik swasthya coverage ke mahatv ko उजागर करने के लिए समर्पित है। और बात अगर स्वदेशी दिवस की करें तो 12 दिसंबर 1930 भारत के स्वदेशी आंदोलन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे आज भी स्वदेशी दिवस के रूप में याद किया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि स्वदेशी अपनाने से देश प्रगति की ओर बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है, स्थानीय उद्योगों और श्रमिकों को रोजगार मिलता है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है, स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल होता है और साथ ही रेणु खाद्य सामग्री अधिक प्राकृतिक और स्वास्थ्य वर्धक होती है।
जी बिल्कुल।
तो अब फाइनली पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को।
जी।
तो 1800 में आज के दिन वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। 1884 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया।
एंड ऑन दिस डे 1901 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड द फर्स्ट डांस स्कूल कॉल्ड एज कला भवन एंड एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्मचार्य आश्रम द कोर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन नियर बोलपुर।
1911 में आज के दिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1917 में आज के दिन फ्रेंच अल्प्स में फ्रांसीसी सेना की ट्रेन के पटरी से उतरने से 543 लोगों की मौत हो गई।
1921 ऑन दिस डे महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट टू इलाहाबाद।
1936 में आज के दिन चीन के नेता चियांग काई शेक ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
एंड ऑन दिस डे 1955 द प्रेसिडेंट प्रोमल्गेटेड एन ऑर्डिनेंस प्रोवाइडिंग द यूसेज ऑफ हिंदी विद इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ इंडियन यूनियन बीजी केयर कमीशन एंड आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड।
जी।
And in 1964, on 12th of December, HJT-16, the first Indian jet trainer, made its inaugural flight. In 1965, on this day, Vijayanta, first India-made military tank, which was handed over to the army, was manufactured at Avadi Heavy Vehicles Factory at Madras.
1971 में आज के दिन भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी गईं।
And in 1992, on 12th of December, the world's largest monolithic granite statue of Lord Buddha, weighing 350 tons, was placed on the Rock of Gibraltar in the midst of Hussain Sagar Lake in Hyderabad.
और रेनू, last but not the least, 1996 में आज के दिन भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
जी।
और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो पुण्यतिथियों में आज सबसे पहला नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी बाबू गैनू सैद का, जिन्होंने भारत में स्वदेशी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लोकमान्य गंगाधर तिलक महात्मा गांधी के स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन से प्रेरित होकर विदेशी वस्त्रों से भरी लॉरी को रोकते हुए बाबू गेनू शहीद हो गए। अंग्रेजों की हुकूमत देश को आर्थिक रूप से लूट रही थी। अंग्रेज कपास, रेशम, पटसन व लोहा आदि कच्चे माल को भारत से विदेश ले जाते और लंदन से माल लाकर महंगे दामों पर बेचते। अंग्रेजों की इसी कुटिल अर्थनीति को विफल करने के लिए लोकमान्य गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी माल का बहिष्कार करने का अभियान चलाया था और बाबू गेनू ने इसमें पूरी शक्ति से भाग लिया। इस प्रकार बाबू गेनू के बलिदान दिवस 12 दिसंबर को पूरे देश में स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
And today we are paying tributes to Pramod Chakravarti, who was an Indian film, Hindi film producer and director. Chakravarti is best known for directing Hindi film classics like Ziddi, Love in Tokyo, Tumse Achha Kaun Hai, in romantic genre and action films like Jugnu, Jagir and Shatru. Lekin pehle hum yahan pe ek bahut pyara sa gana from the movie Love in Tokyo ka sun lete hain.
Bilkul, sunte hain.
जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे।
और रवि, ही ऑल्सो डायरेक्टेड सस्पेंस फिल्म्स लाइक 12 ओ क्लॉक विद गुरुदत्त एंड जॉनी वॉकर एंड पासपोर्ट विद मधुबाला एंड प्रदीप कुमार इन लीड रोल्स। और एक बात बताएं आपको, एक्टर प्राण वॉज अ रेगुलर इन द फिल्म्स डायरेक्टेड बाय प्रमोद चक्रवर्ती और बिकॉज हिज यू नो द मूवीज हैड सच लवली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, क्यों ना एक और गाना हम इनकी मूवी का सुन लेते हैं।
नेकी और पूछ पूछ।
जी।
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है।
बहुत ही मीठे गाने सुनवा रही हैं आप। चलिए, आज ही पुण्यतिथि है खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त साहब की, जिनका जन्म तो हुआ था 3 अगस्त 1886 झांसी में, लेकिन निधन हुआ 12 दिसंबर 1964 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास भी किया। तो हमारे पास मैथिली शरण गुप्त जी की आवाज में ही उनकी एक कविता की रिकॉर्डिंग है, उसे सुन लेते हैं।
हमको कोई भी भय हो, दयामय भारत की जय हो, अलसता पर तन की जय हो, चपलता पर मन की जय हो, कृपणता पर धन की जय हो, मरण पर जीवन की जय हो, पवित्र आत्मा का प्रत्यय हो, दयामय भारत की जय हो। हमारी असी न रुधिर रत हो, न कोई कभी हताहत हो, शक्ति से शक्ति न अवनत हो, भक्तिवश जगत एकमत हो।
और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय फिल्म निर्देशक रामानंद सागर साहब की, जिन्होंने इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आंखें, ललकार, चरस, आरजू, गीत, बगावत आदि जैसी बहुत सी उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण एवं निर्देशन किया। और रेणु इसके अलावा रामानंद सागर सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और हम सब जानते हैं कि उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित धारावाहिक रामायण ने देश में अद्भुत सांस्कृतिक जागरण पैदा किया था। तो कहना लगे हाथ धारावाहिक रामायण से एक संवाद ही सुन लिया जाए।
बिल्कुल।
मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है।
और रेणु, आज अब हम बात करते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत के बारे में, जिनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1950 बेंगलोर, कर्नाटक में।
जी बिल्कुल। इज एन इंडियन एक्टर हु प्रीडोमिनेंटली वर्क्स इन तमिल सिनेमा। इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 5 decades, ही हैज डन 170 फिल्म्स दैट इंक्लूड्स फिल्म्स इन तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली एंड मलयालम, एंड नोन फॉर हिज यूनिकली स्टाइल्ड मैनरिज्म एंड वन लाइनर्स इन फिल्म्स। ही हैज अ ह्यूज फैन बेस इंटरनेशनली एंड हैज अ कल्ट फॉलोइंग, एंड देयर सो मेनी अवार्ड्स दैट वी कैन यू नो काउंट फॉर शिवाजी राव गायकवाड़ और रजनीकांत, जैसे कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्म भूषण इन 2000, पद्म विभूषण इन 2016, इंडियाज थर्ड एंड सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन द हाईएस्ट अवार्ड इन द फिल्म ऑफ सिनेमा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा।
जी, तो एक बात और हम कर लेते हैं इनके बारे में कि रजनीकांत जी को सुपरस्टार के रूप में लोग जो हैं आज भी पूछते हैं, भगवान की तरह उनको पूछते हैं
जी।
और आज ही जन्मदिन है भारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का, जिनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1981 चंडीगढ़ में। और इन्होंने T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और T20 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है। कौन भूल सकता है उन टूर्नामेंट्स को।
बिल्कुल। एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसिस अल्बर्ट सिनेट्रा, हु वाज एन अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर, निकनेम्ड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड लेटर कॉल्ड ओल्ड ब्लू आईज। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनर्स ऑफ द मिड 20th सेंचुरी। सिनेट्रा रिसीव्ड 11 ग्रैमी अवार्ड्स, इंक्लूडिंग द ग्रैमी ट्रस्टेड अवार्ड, ग्रैमी लेजेंड अवार्ड एंड द ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड ही वाज इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स कंपिलेशन of the 20th century 100 most influential people. Lekin yahan pe hum jo gana sunenge wo hai that will remind us that Christmas is not far away and that his voice is Christmas. Imagine sitting in front of a fireplace and listening to this song.
Oh, the way outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
वैसे आपने बिल्कुल सही कहा था रेनू कि क्रिसमस अब ज्यादा दूर है भी नहीं.
है भी नहीं जी.
जी चलते चलते आज का विचार कि किताबें और माता पिता की बातें जीवन में कभी धोखा नहीं देती. इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और रेनू कटारिया को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की.
बट स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.